मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज फरवरी का पहला दिन है, वर्ष है 2017, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और दोस्तों, इन साथी का नाम है शुभम तिवारी, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो शुभम, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के बाद मैं बधाई देना चाहूंगा सैफ अहमद सिद्दकी को, जिन्होंने CDS 2 के रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई किया है, और इसके लिए उन्होंने एकेडमी के इस डेली ऑडियो लेक्चर्स और प्रेस क्लिपिंग्स को धन्यवाद और उसके प्रति आभार व्यक्त किया है। तो सैफ, आपको अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, और मैं अपनी ओर से भी इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और भविष्य की बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं भी। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। कल के न्यूज में काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो कंटेंट के रूप में भी उपयोगी हैं और साथ ही साथ टॉपिक के रूप में भी उपयोगी हैं। तो मित्रों, आज मैं उसी रूप में आपसे बात करने जा रहा हूं। शुरुआत हम करते हैं, हमारे आपने देखा कि संसद का जो बजट सेशन है वो शुरू हो गया है, और आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देखेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदे मेंशन किया हुआ है कि राष्ट्रपति संसद का जब सत्र शुरू होगा तो उसके संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठेंगे और राष्ट्रपति जी उसे संबोधित करेंगे। दरअसल संसद को राष्ट्रपति जी इस प्रकार एक बार संबोधित करते हैं और उसमें फिर वो एक भाषण पढ़ते हैं। नो डाउट कि वो जो भाषण होता है वो सरकार का ही भाषण होता है, और याद रखिए कि अगर वो सरकार का भाषण है तो आप उसे इस रूप में मत लीजिएगा कि फिर राष्ट्रपति की क्या अहमियत है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग इस बात को चूंकि समझ नहीं पाते तो वो कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने तो वही पढ़ा है जो सरकार ने बताया है, सरकार ने दिया है, या जो सरकार कहती है। वो हमारे संवैधानिक प्रोविजन को नहीं समझ पाते, तो थोड़ा सा मैं इसके माध्यम से आपको इसका संवैधानिक प्रावधान स्थिति बताना चाहूंगा। मित्रों, आपने सुना होगा न्यूज में भी थोड़ा सा हमारे राष्ट्रपति जी की आवाज ब्रॉडकास्ट की गई थी, उसमें आपने सुना होगा माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार। याद रखिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई अलग अलग नहीं है। जो सरकार है मूलतः वह राष्ट्रपति जी की ही है, और संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि सारी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वहां नहीं लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री में निहित होगी। ये बात अलग है कि फिर आगे जो प्रोविजन किए गए हैं कि राष्ट्रपति अपने इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे, वो वहां फिर आगे जोड़ा गया है। और मंत्रिपरिषद कौन सी है? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, और लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो मित्रों, ये जो प्रोविजन है इसको अगर आप व्यावहारिक रूप में समझेंगे तो आपको लगेगा कि सही मायने में जो सरकार है वो राष्ट्रपति की ही सरकार है, राष्ट्रपति की सरकार है जिसे वे प्रधानमंत्री की सलाह पर चलाते हैं, और एक तरीके से प्रधानमंत्री ही चलाते हैं। इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यह है संसदीय लोकतंत्र। अमेरिका भी लोकतंत्र है लेकिन वहां अलग तरह का लोकतंत्र है, वो अध्यक्षीय लोकतंत्र है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो वहां स्थिति थोड़ी सी अलग है। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ केवल यह इतना है कि जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनेगी, लोग चुनेंगे सरकार को, बस लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यही है। फिर लोकतंत्र के क्या क्या रूप होंगे वो अलग अलग रूप होंगे। इटली जर्मनी में आप जाएंगे तो आपको चुनाव का एक अलग पैटर्न दिखाई देगा, वो भारत के पैटर्न पर नहीं है, वो अमेरिका के पैटर्न पर नहीं है। अमेरिका के चुनाव अभी हुए हैं, आपने देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी तो समझ में ही नहीं आया होगा कि कैसे चुनाव हो रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी है। है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ, डेमो का मतलब है लोग और क्रेसी का मतलब है तंत्र, यानी लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाएंगे बस। अब वो कैसे चुने जाएंगे, कैसे सरकार बनाएंगे, फिर कैसे काम करेंगे, वही तो वहां का संविधान है, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो मित्रों इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये प्री और मेंस दोनों के लिए इस तरह की बेसिक चीजों को समझना बेहद जरूरी होता है। फिर आपने देखा मित्रों कि जो हमारे राष्ट्रपति जी थे उन्होंने ब्यौरा दिया। ब्यौरा क्या दिया? दोनों पक्ष का ब्यौरा दिया। नंबर वन कि हमने अभी तक क्या क्या किया है, अपनी उपलब्धियां, और इसके बाद एक तरह से भविष्य के प्रति थोड़ी सी एक दृष्टि कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं, हम भविष्य में क्या क्या करने की सोच रहे हैं। तो दोनों बातें उन्होंने गिना दी, मतलब उपलब्धियां और साथ ही साथ भविष्य की नीतियां, डायरेक्शन, ये दोनों बातें उन्होंने बता दी। अब दोस्तों न्यूज में जो आपने एक वाक्य सुना जो हेडलाइन की थी, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, जो मेरी सरकार है वो कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है, कुछ इस तरह का जो भी वाक्य रहा हो, सेंस यही था। अब आप देखेंगे कि ये जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, ये आपके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे तब भी वहां, तब वहां आपको वीकर सेक्शन मिल जाएगा, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को देखेंगे वहां भी आपको वीकर सेक्शन मिल जाएगा, वहां तो देखिए जो आपके पेपर का नाम ही है उसमें साफ साफ दिया हुआ है सोशल जस्टिस, जस्टिस नहीं दिया हुआ है, देखिए सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में आपको सामाजिक रूप से भी न्याय करना है, तो सामाजिक रूप से किनको न्याय की जरूरत है वीकर सेक्शन को, वीकर सेक्शन में हम किनको गिनते हैं ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कौन है वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में दोस्तों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, विमेन, विमेन में मतलब विमेन जेंडर है, मतलब ये मत समझिएगा कि धनी वर्ग की महिलाएं नहीं, विमेन एज ए होल, हैंडीकैप्ड, ओल्ड पर्सन, बच्चे, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ये सब के सब वीकर सेक्शन में आते हैं, है ना। इनकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी अलग हो सकती है और अलग है भी, लेकिन ये सब के सब वीकर सेक्शन में आते हैं। तो जब तक हम इन वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रावधान नहीं करेंगे तब तक सोशल जस्टिस नहीं हो सकता, जस्टिस भले हो जाए लेकिन सोशल जस्टिस नहीं होगा। तो दोस्तों ये बकायदे आपके सेकेंड पेपर काट के टाइटल में मेंशन किया हुआ है, और जब आप अंदर डिटेल में जाएंगे तो फिर डिटेल में भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद आप थर्ड पेपर में चले जाएंगे तो थर्ड पेपर में भी आपको इकोनॉमिक सेक्टर, थर्ड पेपर में तो एक आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है, तो फिर आपको इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिर से वीकर सेक्शन दिखाई देगा, जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, समावेशी विकास, और वहां भी आपको पॉवर्टी, हंगर, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। इसके बाद जब आप फोर्थ पेपर में जाएंगे तो फोर्थ पेपर तो पूरा सिविल सर्विस के एथिक्स पर ही है, और उसमें फिर ये सवाल आता है कि जो वीकर सेक्शन है उसके प्रति जो सिविल सर्वेंट है उसका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जब आप केस स्टडीज पढ़ेंगे जो सॉल्व करने के लिए आते हैं तो उसमें भी आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेंगी जो वीकर सेक्शन से जुड़े हुए हो। तो मित्रों ये जो वीकर सेक्शन का जो टॉपिक है अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब कभी भी आपको वीकर सेक्शन के बारे में गवर्नमेंट की कोई योजना पढ़ने में आती है, कोई बहुत अच्छे डेटा मिलते हैं, लेटेस्ट डेटा मिलते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन्हें इमीडिएट नोट कर लें। तो दोस्तों अब प्रधान राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण दे दिया है, अब संसद उन पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेगी, और संसद के सदस्य इस तरह का धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं कि आप हम आपके प्रति हम आभारी हैं कि आप आए और आने के बाद आपने हमें संबोधित किया। तो अब दोनों हाउसेस अलग अलग धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर देंगे। जो दूसरी बड़ी खबर है मित्रों वो आर्थिक सर्वेक्षण की, इकोनॉमिक सर्वे, बजट से ठीक एक दिन पहले ये इकोनॉमिक सर्वे आता है जिसमें ये बताया जाता है कि अभी तक क्या हमारी ग्रोथ रही है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वैसे देखिए अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में अभी 2 महीने बाकी हैं, हमारा लास्ट मार्च को ये वित्तीय वर्ष पूरा होगा, मैं ये बात आपको सतर्क करने के लिए कह रहा हूं। तो आर्थिक सर्वेक्षण में जो अभी आंकड़े हैं वो एग्जैक्ट मार्च तक के आंकड़े तो हो ही नहीं सकते हैं, जनवरी के कुछ समय तक हो सकते हैं। तो ये जो दो महीने का जो गैप है वित्तीय वर्ष को अगर आप लेकर के चलेंगे तो वहां वो कमी आपको उन आंकड़ों में मिलेगी। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से, क्योंकि इसमें केवल आर्थिक सर्वेक्षण जरूर है लेकिन अब इसमें एक सोशल सर्वे को भी शामिल कर लिया गया है। इसका एक पूरा पार्ट होता है जिसमें सरकार एक सोशल ऑडिटिंग कह लीजिए, सामाजिक क्षेत्रों में क्या क्या हुआ, क्या क्या नीतियां रही, क्या क्या और आगे हो सकता है, उस पर पूरी की पूरी एक रिपोर्ट होती है और वो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में जो भी इस तरह के बारे में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा, वीकर सेक्शंस के बारे में पूछा जाएगा, तो उसकी जितनी ठोस और सही जानकारी आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगी उतनी अखबारों से नहीं मिल पाती है। देखिए अखबारों में तो चीजें टुकड़े टुकड़े के रूप में आती हैं, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और कोशिश कीजिए कि अगर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की भी प्रति आपको मिल जाएगी तो आप नेट पर अवेलेबल होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगी, तो वो भी अगर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आंकड़ों के जंगल में भटक मत जाइएगा, उसमें आंकड़े ही आंकड़े मिलेंगे, तो उस आपको केवल उसमें से 20-25 जो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं बस वही मालूम होने चाहिए। अब मैं यहां इतना वक्त नहीं है कि मैं उन 20-25 की बात कर सकूं, लेकिन ये क्षमता आप में ही होनी चाहिए क्योंकि कब तक मैं बताया हुआ आपके काम आएगा, है ना। किस सेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में क्या है, अनसॉल्व्ड पेपर क्या कहता है, उसके आधार पर आप डिसाइड कर लीजिए। मित्रों आर्थिक सर्वेक्षण के डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कि उसमें क्या था क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं है, आज के अखबार तो उससे भरे पड़े हैं। आप देखेंगे इस पर एडिटोरियल कमेंट भी आएंगे, लेख भी आएंगे, हालांकि आज बजट पेश हो जाएगा तो बजट पेश होने के बाद फिर चर्चा कल से के अखबारों में बजट पर होने लगेगी, लेकिन आप देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख बीच बीच में होगा। जो एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है वो यही कही गई है कि जो वृद्धि दर है हमारी वो 7.5% से लेकर 7.5% तक रहेगी, थोड़ी सी कम होगी विमुद्रीकरण के कारण, गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला आर्थिक राष्ट्र होगा। तो दोस्तों इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। एक जो तीसरी खबर थी मित्रों वो है H1B वीजा को लेकर। ये वीजा क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। बेसिकली ये वीजा है जो अमेरिका में जाकर के जो काम करना चाहते हैं उनको दिया जाता है। अभी तक ये था कि जिस व्यक्ति को साल में $60,000 की नौकरी मिलेगी उसे H1 वीजा दिया जाता था। अब उसे ट्रंप ने बढ़ा करके $1,30,000 पर एनम कर दिया है। अमेरिका में जो सैलरी है ना वो एनम के हिसाब से चलती है, वार्षिक रूप में चलती है। भारत में भी पैकेज आप देखते हैं वार्षिक पैकेज की बात होने लगी है। तो मित्रों $1,30,000 का मतलब है लगभग 88-90 लाख रुपए पर ईयर। आपको लग रहा होगा कि बाप रे 90 लाख रुपए पर ईयर की तो सैलरी बहुत ज्यादा सैलरी होती है, लेकिन अमेरिका को देखते हुए वहां के खर्चों को देखते हुए कोई बहुत ज्यादा आप नहीं कह सकते, मतलब अच्छी है भारत की तुलना में अच्छी है, लेकिन ये मत समझिएगा कि बाप रे 90 लाख रुपए तो हम तो यहां ज्यादा 1 लाख रुपया खर्च करेंगे और 89 लाख बचा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप वहां 2 कमरों का फ्लैट भी लेंगे तो पता लगेगा कि आपको $1,200 देने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि लगभग 70-80 हजार रुपए तो आपके छोटे से फ्लैट में चले जाएंगे। तो उन्होंने एक स्तर बना दिया है और उसका कारण यही है ताकि बहुत कम से कम लोग अमेरिका आए, और अगर बाहर से कम लोग अमेरिका में आएंगे तो बट नेचुरली कि फिर अमेरिकन्स को लोग नौकरी देना पसंद करेंगे। दोस्तों ये अखबार में दिया हुआ है कि हर साल H1B वीजा के तहत लगभग 85,000 वीजा अमेरिका देती है, 85,000 एक साल में, उसमें 80% सोच करके देखिए 80% लगभग 65,000 लोग सिर्फ भारत से होते हैं। आप जानते हैं भारत तो दुनिया का IIT हब है, तो ऐसी स्थिति में बट नेचुरल है कि अब या तो वहां जो हमारी कंपनी है इंडियन कंपनी है, इन्फोसिस भी है, महिंद्रा भी है, ये सब कंपनियां वहां अमेरिका में काम करती हैं और अमेरिका के लिए काम करती हैं, वहां जो IT की जरूरत होती है, अब अगर उनको भारतीय चाहिए तो अब या तो वो सैलरी बढ़ा करके उतनी करें $130,000 तब यहां से लोगों को ले जा पाएंगे, या फिर वो अमेरिका के लोगों को हायर करें। तो मान लीजिए कि अभी वो यहां से ले जाने वालों की को जो सैलरी दे रहे होंगे $70,000-$80,000 दे रहे होंगे, $90,000 दे रहे होंगे, तो अब बट नेचुरल है कि अब उनको उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, और सैलरी बढ़ानी पड़ेगी तो उनका प्रॉफिट कम होगा। तो दोस्तों ये ट्रंप जी ने जो कहा था कि बाय अमेरिकन्स हायर अमेरिकन्स, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो मजबूर होकर के वो अमेरिकन्स को अपने यहां देंगे, या फिर वो है कि अपनी अपने जो ऑफिसेज हैं वो अमेरिका से बाहर ले जाएंगे, और ट्रंप यही चाहते हैं कि अमेरिकन्स को नौकरी मिले। तो मित्रों बट नेचुरल है कि अब ये एक संकट आ गया आईटी सेक्टर के सामने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपनी के सामने। तो आपने महसूस किया होगा, आज अखबार में पढ़ा भी होगा कि आईटी सेक्टर के जो शेयर थे उनमें कल बहुत गिरावट आई है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया कि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। दोस्तों इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, आप राष्ट्रपति जी के संबोधन को पढ़ेंगे, उसको पढ़िएगा मत, याद भी मत कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमिक समझने की चीज है कि नोटबंदी के कारण क्यों हमारे विकास आर्थिक गति रुकेगी। फिर उसमें दे रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, फिर उस पर कैसे सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर पर क्यों उतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो इन सब चीजों को ना जरा सा जोड़ करके आपस में और समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप इकोनॉमिक पर एक तरह से आपकी पकड़ हो पाएगी, जो आपको मेंस में नंबर दिला सकेंगे, अदरवाइज मेंस फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। इसके बाद आखिरी जो खबर थी वो जल्लीकट्टू को लेकर के थी। आपने देखा कि आपको मालूम है जल्लीकट्टू के तो पूरी स्टोरी आप अभी तक की जानते ही हैं, और फिर वहां की विधानसभा ने, तमिलनाडु की विधानसभा ने बकायदे इसके ऊपर कानून पारित कर दिया, और फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि वो कानून गलत उन्होंने पारित किया है, उस याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि अब आप देखिए कि सीधे वो विधानसभा ने पारित किया, सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, यानी विधायिका के द्वारा है, और ये न्यायपालिका है। हाँ, अगर न्यायपालिका को कहीं लगता कि संविधान की आत्मा का उल्लंघन हुआ है तब तो उस पर सुनवाई करती, यहां उनको नहीं लग रहा है कि कोई संविधान की आत्मा का उल्लंघन हुआ है, वो विधानसभा के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में है और उन्होंने अपना वो कानून पारित कर दिया है, तो उन्होंने वो याचिका खारिज कर दी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब न्यायिक सक्रियता की बात होती है या कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको बैलेंस कर सके। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी याचिका आई और वो उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो सरकार को धमकी देना चाहता है, सरकार को दबाना चाहता है, अपने को सरकार से ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता है, ऐसा नहीं होता है। इससे पहले भी एक दो घटनाएं हुई थी जिनकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था, उसी क्रम में यह लेटेस्ट घटना है, और आपको हमेशा अपनी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन इसी लेटेस्ट इन्हीं लेटेस्ट घटनाओं पर ही आधारित करनी होगी। तो दोस्तों ये न्यूज के बारे में थी, जहां तक न्यूज़पेपर का सवाल है मैं आप लोगों को कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लीज आप उन्हें देख लेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, सागर मलिक जो शामली उत्तर प्रदेश से हैं, किशन मेवाड़ा जो पालीताना गुजरात से हैं, गोविंद प्रताप सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, आकाश कुमार, मानवीय बत्रा दिल्ली से हैं, चंद्रशेखर यादव, सेजल राज खगड़िया बिहार से हैं, मोहन पांडे, पूजा तिवारी सूरत गुजरात से हैं, रूपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, और अमन कुमार मौर्य जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।